ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है। ध्वनिमत से ओम बिरला दूसरी बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जी पुणे से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर उपलब्ध हैं और संदीप फुकन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ फोन लाइन पर उपलब्ध हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक। तो आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत है।
नमस्कार आदित्य।
हम बिल्कुल
जी
नमस्कार। बिल्कुल हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आज सदन की कार्यवाही आपने देखी, संदीप जी आप वहां मौजूद थे सदन में जब लोकसभा अध्यक्ष के मतदान की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा है। सदन में नेताओं के हाव भाव और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही, अगर आप आज की कार्यवाही का आंखों देखा हाल हमारे श्रोताओं को बता सकें।
जी बिल्कुल आदित्य जी, देखिए आज ये बहुत ही अच्छा माहौल था और हालांकि आज इलेक्शन जरूर था लेकिन वोटिंग हुआ, वॉइस वोट हुआ जैसे कि हमें पता है, और उसके बाद ही बिरला जी अध्यक्ष चुने गए। सबसे पहले यूं हुआ कि जैसे हमें पता है कि प्रोटेम स्पीकर उनकी अध्यक्षता पे कार्यवाही हुई, जो प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था उनका पहला प्रस्ताव था। उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि ओम बिरला जी जो 17वां लोकसभा के जो अध्यक्ष रह चुके थे उनको दोबारा अध्यक्ष चुना जाए, और इस प्रस्ताव को राजनाथ सिंह जी जो डिप्टी लीडर है लोकसभा के उन्होंने उनको समर्थन दिया। उसके बाद इसी श्रृंखला में काफी सारे वरिष्ठ नेता, सारे घटक दल जो है एनडीए के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने घटक दल है, चाहे ललन सिंह हो, राममोहन नायडू हो टीडीपी के, या मिस्टर बसु मतारी हो जो यूपीपीएल आसाम के, हनीभूषण चौधरी एजीपी आसाम के, ऐसे सारे घटक दल उन्होंने सबने प्रस्तावना रखा। और उसके बाद विपक्ष की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो एमपी हैं अरविंद सावंत उन्होंने रखा, और तारिक अनवर कांग्रेस के उन्होंने रखा। विपक्ष के तरफ से कोडिकुनिल सुरेश वो उम्मीदवार थे। तो पहले सबसे विपक्ष की तरफ से अरविंद सावंत जी ने शिवसेना के जो एमपी हैं उन्होंने रखा कोडिकुनिल सुरेश के पक्ष में, और उसके बाद सुप्रिया सुले, कांग्रेस के तारिक अनवर, एनसीपी के सुप्रिया सुले, इन सबों ने समर्थन किया। और जैसे कि प्रक्रिया होता है कि उसके बाद मोशन को वोट, उस पर वोट लिया जाता है, तो ध्वनि मत से वोट पास हुई, पारित हुआ, और उसके बाद उनको घोषित कर दिया गया। जब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला, जब पारित हो गया ध्वनि मत से, और उस दौरान कुछ क्षणों के लिए एक वो जरूर थी कि ललन सिंह जी खड़े हो गए थे, उन्होंने पूछा कि वोटिंग क्या हुआ, तो फिर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बोला कि ऑपोजिशन ने डिवीजन के लिए प्रेस नहीं किया, तो ध्वनिमत से पारित हो गया और ये चुने गए। और उसके तुरंत बाद हमने जैसे ही ये घोषित कर दिया गया, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो चेयर पे थे, जो पीठासीन थे उस टाइम, वो उन्होंने आसन से बोला कि वो बिरला जी चुन लिए गए। उसके बाद तुरंत बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल ही उनको मनोनीत किया गया है अपने पार्टी की तरफ से, तो नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से उन्होंने जो ऑपोजिशन के बेंचेस हैं वहां से वो चल के गए बिरला जी की तरफ, और वहां जाके उन्होंने हैंडशेक किया। प्रधानमंत्री जी भी अपने आसन से उठ के बिरला जी को कांग्रेचुलेट करने गए। उन्होंने भी फिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों ने आपस में उन्होंने हैंडशेक किया। फिर दोनों साथ संसदीय कार्य मंत्री के साथ तीनों लोग इनको एस्कॉर्ट करते हुए स्पीकर के चेयर पे बिठाया, और उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हुआ। आदित्य जी
जी जी, पूरे देश ने वो छड़ देखा, उसका गवाह बना जो आपने अभी जिसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी जब हमारे नौ चयनित अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, साथ में राहुल गांधी जी होते हैं, किरण रिजिजू जी रहते हैं, तो वो दृश्य लोग भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी, आपकी टिप्पणी अगर हम चाहें शेखर जी, आज के चुनाव पर क्या रहेगी?
जी बिल्कुल, जैसे अभी संदीप जी बता रहे थे, एक बहुत बढ़िया दृश्य था कि राहुल जी और प्रधानमंत्री हाथ मिले, उसके बाद हमारे नए चुने हुए स्पीकर को अपने चेयर तक कंपनी किए, जो एक परंपरा रही है। फिर वो बैठने के बाद वहां पे प्रोटेम स्पीकर जो भदोरी मेहता, उन्होंने बोला कि आप आइए बैठिए, अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको। उसके बाद हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की भाषण हुई, उसके बाद राहुल जी की हुई और सब लीडर्स अपने अपने बातें रखे कि बिरला जी की तारीफ हुई कि बिरला जी 17वीं जो लोकसभा में अध्यक्ष रहे हैं और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष रहेंगे। और ऑपोजिशन की तरफ से राहुल जी ये बात रखी कि भाई ऑपोजिशन चाहता है कि उनको मौका मिले अपने बातें रखने के लिए, तो हर पार्टी की तरफ से ये बातें कही गई, जैसे विपक्ष की तरफ से ये बात थी और प्रधानमंत्री की तरफ से ये थी कि क्योंकि पिछले सदन में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, कई महत्वपूर्ण कानून पास किए गए और उनकी उम्मीद थी कि आज बिरला जी के स्पीकरशिप में और भी नई चीजें होंगे जो विकसित भारत की ओर जो सरकारें कदम ले रही है उसके लिए मदद करेगा। कुल मिला के देखा जाए कि कांग्रेस का जो बड़ा फैसला कि डिवीजन प्रेस नहीं करना है, जिसको बाद में जयराम रमेश ने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों हमने इसको मांगे नहीं, लेकिन आश्चर्य बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता कहे कि भाई ये ठीक तरह से इलेक्शन नहीं हुआ, डिवीजन होना चाहिए था, लेकिन वो तो डिवीजन मांगे नहीं अंदर। लेकिन मुझे लगता है पोस्चरिंग हो रहा है क्योंकि चुनाव हो गया है, लेकिन कल जो घटनाक्रम रही उससे राहुल जी किसी तरह डैमेज कंट्रोल किए, क्योंकि जो कोड़ोकुली सुरेश का जाके नॉमिनेशन भरना, इसको लेकर ममता को भी लगा भाई हमसे बातचीत नहीं हुई, इंडिया अलायंस में कोई कंसल्टेशन बिना हो गया था। इसी बातें शरद पवार भी बोले कि भी हम नहीं चाहते कि स्पीकर की ये पर इलेक्शन हो, जो हम ये चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर पोस्ट ऑपोजिशन को दिया जाए। इसी तरह की राय अखिलेश यादव जी ने भी रखा। बाद में जो खबर आई कि राहुल जी ने ममता जी से बात किया, बोले कि परिस्थिति के कारण इस तरह हुआ, आगे तब कुछ ऑपोजिशन अलायंस के बीच में बातचीत करके ही फैसला लिया जाए। एक प्रकार से ये जो बल परीक्षण के रूप में जो परिवर्तन हो सकता था वो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है, इससे आगे जाके कल हम देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ज्वाइंट एड्रेस होगा, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होगा, दोनों हाउस में डिबेट होगी, उस डिबेट में भी काफी बातें सामने आएगी विपक्ष की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी। ये हो सकता है एक पहला मौका हो कि दोनों तरफ अगर एग्री करते हैं तो अच्छी स्ट्रक्चर डिबेट हो, अच्छी पॉइंट सामने आए और लोग चाहते हैं, जो जनता जो नए लोगों को भेजे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को देखना चाहते हैं कि कैसे लोगों की मुद्दा को लेकर कैसी बहस होती है, सरकार कैसी जवाब देती है, सरकार किस तरह की सोल्यूशन उसके सामने है, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में कहा, जिस दिन ये हाउस शुरू हुआ था मेंबरशिप के मेंबर्स के वोट से, उस समय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, नाराबाजी नहीं, तो ये तो लोग नहीं चाहते, चाहते हैं कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए हर मेंबर्स की तरफ से। आदित्य
जी बिल्कुल, क्या हम इसे मान सकते हैं कि ये विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव करने के लिए एक तरह से हट थी, या क्योंकि पता तो सबको था कि सरकार के पास अपना बहुमत है तो वोटिंग की स्थिति पर विपक्ष क्यों आमादा हुआ? जी संदीप जी, आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, मैं उसे हट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन विपक्ष मेरे ख्याल से अपना एक उनका एक नजरिया था, उनका एक व्यू पॉइंट था कि जैसे अभी शेखर जी ने कहा कि काफी सारे विपक्ष के बड़े नेता उन्होंने कहा था कि कन्वेंशन रहा है कि जो स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी की हो तो विपक्ष के नेता जो है वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलता है, तो इस पे कांग्रेस ने काफी जोर दिया था कि इस बार 10 साल बाद, देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा आदित्य जी कि पिछले 10 सालों तक कांग्रेस एक ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड ऑपोजिशन का पद, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पद, जो अभी राहुल गांधी ने जो पदभार संभाला है, ये पद एक्ट 2014 में भी और 2019 में भी नहीं मिला था, क्योंकि उनको 543 जो सांसद है वो सांसद के 10% 10% कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, जो नंबर उनके आंकड़े नहीं थे, एक बार 44 आए एक बार 52 आए, तो वो आंकड़ा नहीं था, उसी लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या रिकग्नाइज ऑपोजिशन नहीं था। अभी इनके पास, अभी कांग्रेस के पास 99 है और 3 इंडिपेंडेंट सांसदों के भी उनके समर्थन प्राप्त है, कुल मिला के मतलब उनका आंकड़ा 100 से ऊपर हो जाता है, तो उनको लग रहा है कि उनको ये उनका हक बनता है या उन्हें मिलना चाहिए। इसी को जताने के लिए, क्योंकि सरकार ने कमिटमेंट नहीं किया, सरकार ने कहा था कि आप अभी हमें समर्थन करो, हम आगे देखेंगे डिप्टी स्पीकर के बारे में, और इसी बात पे आम सहमति नहीं बन पाई, और इसी को दर्शाने के लिए इन्होंने एक कैंडिडेट जरूर उतारा, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे शेखर जी ने कहा कि एक परंपरा रही है कि जो आपका स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए उस पद को, इस पद का एक अपना गरिमा है और इस पद को माना जाता है कि पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर है, तो ये कोई पार्टीजन पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं है। और उसी लिए आम सहमति से कई सालों से, आप अगर देखें इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ 3 बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुए थे, सबसे पहले 52 में हुए थे, उसके बाद 1967 में, उसके बाद 1976, ये चौथा मरतबा है जबकि चुनाव हुआ।
क्या उस समय भी ध्वनिमत से ही ये वोटिंग हुई थी?
मेरे ख्याल से 67 में वोटिंग हुई थी और उसमें डिवीजन मांगा गया था, जहां तक मुझे याद है। ये 67 में नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के और टी विश्वनाथन, जिसकी कैंडिडेचर उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसके बाद 76 में भी हुआ था, उस टाइम इमरजेंसी लागू था, उसमें बलिराम भगत हुए थे और
जनसंघ
उसमें उनके खिलाफ जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी वो खड़े थे।
जी बिल्कुल। अब चूंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है, हमें लोकसभा अध्यक्ष मिल चुके हैं, आप लोगों से मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आपने इस चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी की चुनाव के बाद कौन सा पक्ष और मजबूती के साथ उभरा है, कौन अपनी एकजुटता दिखाने में सफल रहा है? संदीप जी
देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक एनडीए की बात है, उन्होंने अपना एकजुटता तो बहुत अच्छे से दिखाया। उनके जो समर्थन थे, जो प्रस्तावना थे, 10 प्रपोजल थे और लगभग सारे घटक दलों ने या तो उन्होंने प्रपोजल दिया ओम बिरला जी के पक्ष में या उनका समर्थन किया, तो एकजुटता दर्शाने के लिए ही ऐसे किया गया था कि 10 सेट थे प्रपोजल। जहां तक विपक्ष की बात है, शेखर जी ने अभी आपको बताया था कि थोड़ी सी उनमें मतभेद थी, विपक्ष के अपने में ही थोड़ी सी मतभेद थी। तृणमूल कांग्रेस का कल ही कहना था कि हमें पूछे बिना कांग्रेस ने एक तरफा निर्णय ले लिया था। शरद पवार जी ने भी कहा था कि वो चुनाव अध्यक्ष पद के चुनाव के पक्ष में नहीं है, और मेरे ख्याल से इसी के चलते इन्होंने आज कांग्रेस ने वो प्रेस नहीं किया कि डिवीजन हो। डिवीजन का मतलब जब आप एक्चुअली वोट करके काउंट करें
जी
कितने एमपी किस तरफ है, तो वो काउंटिंग या हेड काउंट नहीं हुआ, तो डिवीजन नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भी कहा कि हम चाहते थे कि 18वां लोकसभा के जो पहला सत्र है और उसमें ये संदेश जाए कि हम आम सहमति चाहते हैं, और इसी वजह से हमने डिवीजन को प्रेस नहीं किया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि डिवीजन को लेके उनमें आपस में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि उसके तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी बाहर आके बोले, आज ही बोले कि डिवीजन हमने मांगा था, कुछ लोगों ने मांगा था, लेकिन डिवीजन हुआ नहीं। जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बोला है कि हमने मांगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से शायद इसमें थोड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाता तो बेहतर होती, मतलब विपक्ष के नजरिए से अगर उनकी आपस में तालमेल अगर इससे बेहतर होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है।
शेखर जी, ये बिल्कुल एक तरह से विपक्ष की तरफ से ये बताने की कोशिश हुई कि हम डिवीजन इसलिए नहीं चाहते हैं कि कहीं हमारी आपस में जो दरार है वो सामने ना आ जाए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसीलिए हुआ?
नहीं, देखिए, ये स्पीकर का इलेक्शन बल परीक्षा रूप में करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राहुल जी का पहला ये विचार था कि सरकार को हम हर मोड़ पे हर अवसर पे विरोध करना है, इसलिए स्पीकर चुनाव को भी विरोध करना, ये इस तरह की एक पोजीशन लिए थे। लेकिन मुझे लगता है जब शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता कह रहे हैं भाई, मतलब हर बात पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जो जिस तरह की मैंडेट आई है 2024 का जो लोकसभा का जो है उसमें एनडीए के पास वो हाफ ए मार्क से ज्यादा है ही, और हिंदी अलायंस के पास वो मार्क से कम है, काफी कम है
जी।
तो इसीलिए कोई बल परीक्षा की जरूरत नहीं थी, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो नेता वो भी सोचे कि इससे कोई कुछ होना नहीं है। और लेकिन जैसे आपने कहा, अगर मान लीजिए ये अगर बल परीक्षा होता, एनडीए का फिगर अगर 290 से जाके 300 दिखाता, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने वो सपोर्ट किया है, या अगर हिंदी अलायंस की जो स्ट्रेंथ है 232 जो भी है उससे अगर कम आता तो ये दर्शाता है कि भाई इनके पास लोग कुछ लोग वहां चले गए, तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे काफी मौका मिलेगा, फिर बजट सेशन होगी, बजट सेशन में आप देखेंगे बजट सेशन में काफी ये रहेगा, बजट को ही पास करना होगा, वोट ऑन काउंट होगा, हर मोड पे आपकी दल की परीक्षा तो होती रहेगी, इसके लिए जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आदित्य जी, आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, ये एक नया सिलसिला हो सकता है कि सरकार और विपक्ष उनके अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री की बात है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की बात है, पार्लियामेंट को मतलब चलाना का काम, ये दायित्व दोनों को बनता है, सरकार को भी बनती है, विपक्ष की बनती है। और पार्लियामेंट की सिटिंग जब भी होती है उसका दो ही काम होता है, एक हर इश्यू पे डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो, दूसरी कानून पास करना, और सबकी बात सुननी चाहिए। हमेशा एक डिक्टम होता है कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट से एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव इट से, अर्थात ऑपोजिशन को जब मौका मिले उनको मौका मिलनी चाहिए अपने बात रखने के लिए, और सरकार को जो भी कानून बनाने का काम है उस काम में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, हम मान सकते हैं कि एक शुभ शुरुआत है 18वीं लोकसभा की, जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आकर, और विपक्ष ने भी कहा है कि हम सरकार का समर्थन करेंगे उनके बहुत सारे मुद्दों पर, और सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चलती रहे, ये सभी ने आज उम्मीद जताई है। तो अब एक बिल्कुल बुनियादी सवाल पर हम चलते हैं, सवाल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, संवैधानिक नियम क्या है? संदीप जी, आप अगर इस बारे में बताएं तो।
नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जैसे आप जानते हैं, पहली बात तो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो मेंबर्स हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उन्हीं में से एक को चुनना होता है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, उनको समर्थन प्राप्त होनी चाहिए, एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के लिए, और लोकसभा अध्यक्ष जो रूलिंग पार्टी है वो नॉर्मली उन्हीं के पास रहता है, लेकिन उनके सहयोगी दल भी रह सकते हैं, और वो एक मोशन मूव करते हैं, और जो मोशन उसको एडॉप्ट करना होगा, और उसके बाद आम सहमति से, जैसे मैंने कहा कि 52 से लेके आज तक ये चौथी चुनाव थी, नॉर्मली आमतौर पे यही देखा जाता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष पद है वो पार्टी से ऊपर है, उसीलिए जैसे शेखर जी ने कहा, इस चीज पे बल शक्ति प्रदर्शन, आपका बल कितना है, संख्या बल की प्रदर्शन या संख्या बल की शक्ति प्रदर्शन नहीं होती
जी,
वो आम सहमति से ही होती है। और जो नियम है कि आमतौर पर हमने देखा है कि नॉमिनेशन एक ही, जैसे मैं आपको कई सालों से हम लोग पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं और हमने देखा था कि कभी वो दो कैंडिडेट होते ही नहीं है, एक ही होते हैं, फिर वो एक ही नॉमिनेशन होता है, तो फिर उनको आम सहमति से चुन लिया जाता है। और जो आज हमने देखा, जो राहुल गांधी और मतलब नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं, वो दोनों बिरला जी को एस्कॉर्ट करते हुए ले गए और अपने आसन तक बिठाने के लिए, यही संसदीय परंपरा रही है कि क्योंकि आमतौर पे एक ही मतलब एक ही कैंडिडेट रहते हैं, तो उनको उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता, कोई ध्वनिमत से पारित नहीं होता, और उनको चुना हुआ मान लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर उनको वो सब घोषणा करते हैं, प्रस्तावना को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रस्तावना आया है क्या, हाउस को ये मंजूर है, और उसके बाद ध्वनिमत से वो प्रस्तावना पारित होती है, उसके बाद उनको जाके आसन में बिठा दिया जाता है। ये आम तौर पे है, ये बहुत रेयर इंस्टेंस है कि आमने सामने दो कैंडिडेट थे और ध्वनिमत से पारित हुआ, वोटिंग हुआ, ये एक वॉइस वोट हुआ।
बिल्कुल शेखर जी, अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के दायित्वों की बात करें कि सदन में उनकी क्या भूमिका रहती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
आदित्य जी, स्पीकर हाउस के कस्टोडियन होते हैं, हर मेंबर्स की मर्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो नियम कानून है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वो बिजनेस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर्स के हिसाब से हाउस अपने कार्रवाई करे। और ज्यादातर क्योंकि पार्लियामेंट का काम कानून बनाने का काम है, यानी लेजिस्लेशन का वही सबसे बड़ी काम वही है, तो जब भी पार्लियामेंट के अधिवेशन बुलाया जाता है तो यही बात, यही मेन दायित्व बनता है, तो स्पीकर का वही है कि कोई भी बिल हो वो ठीक तरह से पास हो, ठीक से इंट्रोड्यूस हो, उस पर बहस हो और पास हो। और हर मेंबर की जो प्रिविलेजेस होती है वो भी उनकी ये नहीं आती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है। और हाउस में इसके अलावा जो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पावर है स्पीकर के पास, वही है जो हमारे 10 शेड्यूल जो है कि जो दल बदलू कानून जो है मतलब वो मोदी का ही जजमेंट सबसे फाइनल होता है, स्पीकर का वो कोई वो जस्टिसेबल नहीं है। कोर्ट में आप जा नहीं सकते स्पीकर की राय को लेकर, हाँ प्रोसीजर्स को लेके आप कोर्ट में जाते हैं, कैसे केसेस हुए जहां पे किस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, वो प्रोसीजर्स प्रोसेस क्या रहा प्रोसीजर को लेकर स्पीकर किए हुए, लेकिन स्पीकर की डिसीजन चैलेंज नहीं होती क्योंकि पार्लियामेंट का अलग पावर्स है, कोर्टों का अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, ये सारे बड़े क्लियर है हमारे संविधान में। और जो भी स्पीकर बनते हैं वो सबके विश्वास के और सबके सहयोग के साथ ही वो हाउस चलाते हैं। और डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर की बात बार बार आती है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर हमने देखा है, हाँ कई समय विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन राज्यों में अगर देखेंगे, मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरल हो या तेलंगाना हो या झारखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जहां विपक्ष है वहां पे कोई डेप्यूटी स्पीकर एक ही पार्टी का है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल दोनों पोस्ट पे है डिप्टी स्पीकर स्पीकर, तो तमिलनाडु में डीएमके दोनों पोस्ट पे है, केरला में सीपीएम सीपीआई यानी एक ही वामपंथी में है, तेलंगाना में कांग्रेस स्पीकर है कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, झारखंड में जेएमएम के स्पीकर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी है कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस दोनों पद पे है। तो ये बात जो की जा रही है, लेकिन इसका यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, लेकिन अच्छी ये होगी ट्रेडिशन अगर हम फॉलो कर सकते हैं, ये यूनानिमसली अगर स्पीकर की हो जाए और वैसे डिप्टी स्पीकर भी हो जाए तो एक स्मूथ फंक्शनिंग रहती है, ऑपोजिशन को भी लगता है और सरकार को भी लगता है एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आदित्य जी, मैं बताना चाहता हूँ, ऑपोजिशन को भी पीपुल्स मैंडेट को रेस्पेक्ट करना होगा, और सरकार को भी अगर वो मैंडेट ऑपोजिशन के लिए एक भूमिका थी, वो भूमिका भी सरकार को रेस्पेक्ट करना होगा। ये सबसे मूल मंत्र है हाउस चलाने के लिए, हाउस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन उस मैंडेट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी स्पीकर आज के इलेक्शन से पहले विपक्ष ये मैंडेट को भी तैयार नहीं थी कि भाई मोदी जी वापस आ गए तो प्रधानमंत्री बन के, इसको लेकर भी कांग्रेस ओपनली कह रहे थे भाई हम तो नहीं मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मैंडेट मिला। तो ऐसी बात है कि भाई चुनाव की गर्मी चुनाव के बाद आगे नहीं बढ़नी चाहिए, चुनाव के समय कई बातें कही जाती है कई ये होता है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है परिणाम आता है, हर पार्टी को मैंडेट मान के पार्लियामेंट, क्योंकि 5 साल के लिए चुने गए, 5 साल के काम करना है, देश को आगे ले जाना है, कई समस्याएं हैं जिस पर बातचीत के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, कंसेंसस के माध्यम से हम हल ढूंढ सकते हैं।
बिल्कुल, आपने दल बदल विरोधी कानून की बात की, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर पक्ष और विपक्ष अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक और मुद्दा है सांसदों के निष्कासन से जुड़ा हुआ, हमने पिछले 17वीं लोकसभा में भी देखा था कि बड़ी संख्या में सांसदों का निष्कासन हुआ था लोकसभा से, तो इसमें ऐसे निष्कासन की स्थिति में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि निष्कासित सांसद या विधायक अदालतों का रुख कर लेते हैं, इस पर संविधान में क्या कहा गया है, क्या सदन में अध्यक्ष के फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है? संदीप जी आप क्या कहेंगे?
नहीं, वैसे जो दो चीजें हैं, एक तो जो होता है कि सस्पेंशन, वो तो टेम्पररी होती है, जो आप अगर डिस्क्वालिफिकेशन का बोल रहे हो, निष्कासित कर दिया, एक्सपल्शन, तो आमतौर पे ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, जैसे शेखर जी ने समझाया अभी आपको कि कुछ हमारे जो कार्य क्षेत्र बंधा हुआ है, अदालत का अपना कार्य क्षेत्र होता है, संसद का अपना कार्य क्षेत्र होता है, सरकार का अपना होता है, और मतलब अलग अलग जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, जो डिविजन ऑफ पावर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो बड़ा ही वेल डिफाइंड है। लेकिन हाँ, कोई भी सिटीजन किसी निर्णय के खिलाफ का अदालत का दरवाजा जरूर खटखटा सकता है, अगर उनको लगा कि उनका पक्ष नहीं सुना गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिनाय हो गया, तो या जो भी निर्णय लिया गया वो संविधान के तहत नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ऐसे अगर कोई अपने ऐसे तर्क दे के कोई भी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो स्पीकर का जो पावर्स हैं वो सुप्रीम होते हैं, जहां तक हाउस फंक्शनिंग की बात है, वो कस्टोडियन होते हैं हाउस के पावर्स, प्रिविलेजेस, एक एमपी के क्या प्रिविलेजेस हैं, उनके क्या पावर है, क्या रूल्स से चलाया जाना चाहिए, ये सब कुछ स्पीकर ही तय करते हैं। इस पे आमतौर पे कोई कोर्ट उस पर दखल अंदाजी नहीं करती, नहीं तो इसे इंक्रोचमेंट ऑफ पावर कहा जाता है। और हमने जब सोमनाथ बाबू जब स्पीकर थे तो हमने देखा था कि कैसे सोमनाथ चटर्जी, जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान थे कानून के, खुद बैरिस्टर रह चुके हैं, और वो अक्सर कहते थे कि ये मेरा क्षेत्र है और जुडिशरी इसमें दखल अंदाजी ना करे। तो वो काफी डिस्टिंक्ट कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जब टकराव हुए हैं। देखिए, जहां तक कोई सांसद अगर जाना चाहे अदालत में तो आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके राइट टू रेमेडी जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, आप जा सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशन रहा है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है और उनके जो विशेष अधिकार क्षेत्र है उस पर दखल अंदाजी नहीं करती।
बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि सदन में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। कई बार हमने ये देखा है कि ऐसा संभव नहीं हो पाता है अलग अलग कारणों से। तो मैं एक संक्षिप्त और एक आखिरी टिप्पणी आप दोनों से चाहूंगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए जाने की जरूरत है, एक एक कर संक्षिप्त में अगर आप टिप्पणी दें।
नहीं, देखिए, पार्लियामेंट ऐसे जगह है जहां पे डिस्कशंस की माध्यम से ही बात रखनी चाहिए। शोर शराबी में कोई बातें किसी को सुनाई नहीं देता। देखिए, आप अपने बात रखिए, अगर सरकार की तरफ से या ऑपोजिट साइड से कोई भी बात है वो भी सुन सकते हैं कि क्या है, कि क्या हमारे में इतनी पेशेंस नहीं है कि दूसरों की व्यू पॉइंट सुनने के लिए या दूसरे बात सुनने के लिए। क्योंकि हर एक समय में देखिए, पार्लियामेंट में जो चुने हुए आए हैं सब देश के विकास के लिए ही सब प्रतिबद्ध है। जब मामला विकास का हो और हमारा देश इतना बड़ा हो, कई समस्या है। अगर हम राजनीति की एक अलग जगह होती है, ठीक है, चुनाव है, समय आप करते, लेकिन बाद में जाके जब, क्योंकि भारत के में बहुत समस्या है, भारत बहुत बड़ा भारत और इसमें विकास को लेकर कई सवाल हैं, लोगों को लेकर कई प्रश्न हैं, पीने पानी से लेकर आवाज के मामले लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना चुनाव क्षेत्र की बात रखना चाहता है।
बिल्कुल,
कभी कभी जब शोर शराब होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो ये बात मतलब हाउस में ये सारी बातें सामने नहीं आती।
संदीप जी, आपकी टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी।
जी, मैं वही दोहराऊंगा जो एक कहावत है कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे।
बिल्कुल,
तो उनका जो मतलब ऑपोजिशन की अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार, क्योंकि सरकार को कार्य चलाना है, देश को चलाना है, तो उनको जो पावर्स चाहिए उनको वो मिलनी चाहिए ताकि सदन सुचारू रूप से चले।
बिल्कुल, बिल्कुल,
और उनके कामकाज में बाधा ना हो।
जी, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों मेहमानों ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सारगर्भित चर्चा की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इस उम्मीद के साथ कि 18वीं लोकसभा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और इस लोकसभा में ज्यादा लोगों की बात, लोगों के मुद्दे सदन के समक्ष आएंगे और चर्चा होकर कानून बनाए जाएंगे। इसी के साथ हम आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
धन्यवाद, शुक्रिया आदित्य जी।
अभी आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।